प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग चार, लेक्चर नंबर 265। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। सुर असुर नरपति वंद्यने प्रविनष्ट घाती कर्मने प्रणमन करु धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वरिशेष तीर्थंकर अने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्वने मुनि ज्ञान दृगचारित्र तपवीर्या चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदोवळी मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने य नमस्करण करिये रीते गणधरने अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं हूँ साम्य निजेना शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा अमृत चंद्र जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उत्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से अभी हम चौथी पुस्तक पढ़ रहे हैं और आ है पृष्ठ संख्या 37 पर 37। ऊपर से तीसरा पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने कुछ बोल रहे हैं, कुछ कहना है? हाँ, द्रव्य पर्याय दो प्रकार के, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय के दो भेद, समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय। अनेक द्रव्यों में एकपना की प्रतिपत्ति हो रही है। गुण पर्याय में क्या है, आयत की अपेक्षा अनेकता की प्रतिपत्ति हो रही है, क्योंकि द्रव्य वही का वही है परंतु पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो अनेकता दिखती है। तो अनेकता की प्रतिपत्ति बताया था, उसको गुण पर्याय कहा था। यहां पढ़ेंगे अभी ऊपर से या नीचे के, देखो तीसरा पैराग्राफ। गुण द्वारा आयत यानी लंबाई पर्याय एक के बाद एक पर्याय होती है। काल अपेक्षा बताना है तो हमें नीचे से ऊपर तक बताते हैं, ऊपर यानी भविष्य काल आने वाला और नीचे अभी वर्तमान का बताएंगे। वह अनेकता की प्रतिपत्ति, नीचे अर्थ है प्रतिपत्ति एटले प्राप्ति ज्ञान स्वीकार, उसके कारणभूत गुण पर्याय है। गुण पर्याय के भी दो प्रकार है, अर्थात गुण कर पर्याय के भी दो प्रकार है, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। यानी हम उसको कैसे कि स्वभाव गुण पर्याय और विभाव गुण पर्याय। गुण पर्याय के भी दो भेद है, स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय। तो द्रव्य पर्याय में स्वभाव विभाव भेद हो गए क्या नहीं हो गए मनीषा बहन? द्रव्य पर्याय में स्वभाव द्रव्य पर्याय, विभाव द्रव्य पर्याय ऐसा कुछ है क्या? हाँ, उसमें कौन से भेद है? समान जातीय और असमान जातीय, इतना ही उसमें भेद है। यहाँ गुण पर्यायों में वो विभाव है या स्वभाव है, उसमें दो भेद है। गुणों की पर्यायों में स्वभाव पर्याय या विभाव पर्याय से भेद है दो। उसमें समस्त द्रव्यों के अपने अपने अगुरु लघु गुण, हरेक का अपना अपना अगुरु लघु गुण जुदा है, उसके अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या जुदी जुदी है, पर हरेक का अपना अपना है। तो उसमें समस्त द्रव्यों के अपने अपने अगुरु लघु गुण द्वारा प्रति समय प्रकट होने वाली षट्स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति, वह स्वभाव पर्याय है। अनेकपना की अनुभूति यानी हर समय में वो तो इसका परिणमन हो रहा है अगुरु लघु गुण का, तो अनादि से वो स्वभाव पर्याय ही होती है, ये नक्की रखना है। तो वो उसको कहेंगे स्वभाव पर्याय। अभी उसी को बता रहे, प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघु गुण के कारण पर्याय में षडगुण हानि वृद्धि अनादि अनंत पर्याय में होती है, उसे स्वभाव गुण पर्याय कहने में आता है। ये अनादि से शुद्ध है, केवल ज्ञान बाद में हो जाता है, यह अनादि अनंत शुद्ध ही है। यहां लिखा है ना, अनादि अनंत पर्याय षडगुण हानि वृद्धि अनादि अनंत पर्याय में होता, वो अनादि का शुद्ध परिणमन है, उसे स्वभाव गुण पर्याय कहने में आता है। उसमें विभाव नहीं, विकार नहीं लेना, समझ में आया? यानी उसमें विकार कभी होगा ही नहीं, अनादि से वो शुद्ध ही शुद्ध है।
वो प्रत्येक द्रव्य में है, ये बात बता।
हाँ, अगुरु लघु गुण प्रत्येक द्रव्य में है
और वो अनादि से शुद्ध 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 ही परिणमित हो रहे हैं। जैसे हम अन्य गुणों में भी देख सकते हैं, उत्पाद वे ध्रुवत्व नाम का गुण है, वो भी सामान्य गुण है और वो भी पहले से ही स्वभाव रूप परिणमित होता है। भाव अभाव वगैरह वगैरह जो छह गुण है वे भी स्वभाव रूप ही परिणमित होते हैं। त्याग उपादान शून्य तो शक्ति, ये भी सामान्य गुण है, सब द्रव्य में लगता है और उसके भी स्वभाव रूप परिणति अनादि से चल रही है। ये जो 47 शक्तियां जो है समय सार में बताई हुई, उसमें से अधिकतर तो सामान्य ही है, लेकिन वहां वर्णन चल रहा है जीव द्रव्य का, इसलिए वो जीव द्रव्य में अटैच किया।
हाँ, देखो षटगुणी हानि वृद्धि का अर्थ बताते हैं। षट यानी छह प्रकार की वृद्धि या हानि, तो किसमें वृद्धि? तो प्रत्येक गुण में अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, उसको कहते हैं गुण की शक्ति नापने का यूनिट। फलदान नहीं कहना, क्योंकि फलदान वाली बात तो कर्मों में होगी। ज्ञान गुण की अपनी शक्ति है, दर्शन गुण की अपनी शक्ति है, प्रत्येक गुण की, चारित्र गुण की अपनी शक्ति, वीर्य गुण की है। अभी स्पर्श रस गंध गर्ण वर्ण गंध उसको भी ले लेना, हरेक की जो अपनी अपनी जो गुण है उसमें अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। तो पर्याय में वो किस रूप से प्रकट है? तो ये तो ये कहते अगुरु लघु गुण तो स्वभाव पर्याय है, उसमें तो हर पर्याय में वो तो षट्स्थान वृद्धि हानि होती रहती है। अभी ये विषय समझने में कठिन है, फिर भी ये कौन सी छह प्रकार की है? तो जो टोटल अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है उसके अनंतवा भाग बढ़ना, उसको कहेंगे अनंत भाग वृद्धि। उसका असंख्यातवा भाग उसमें ऐड करना, उतनी बढ़ोतरी होगी, उसको कहेंगे असंख्यात भाग वृद्धि। उसका संख्यातवा भाग उसमें बढ़ना, उसको कहेंगे संख्यात भाग वृद्धि। जितना है उससे संख्यात गुणा हो जाना, उसको कहेंगे संख्यात गुण वृद्धि। वैसे असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। हाँ, जो मैक्सिमम और मिनिमम जो बताया है, तो उसमें ये जो छह प्रकार की हानि वृद्धि होती है, तो हर समय में षट्स्थान पतित हानि भी और वृद्धि भी बताई है और ये स्वभाव पर्याय बताई है। उसको हम इमेजिन इसलिए नहीं कर सकते कि वो तो केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म विषय है, परंतु ये अनादि से प्रत्येक द्रव्य में, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य, हर द्रव्य में अपना अपना अगुरु लघु गुण है।
बात तो ये है कि जो मति श्रुत ज्ञानी धारक जीव है वो न असंख्यात के वॉल्यूम को समझ सकता है, यानी उसको फिगर नहीं कर सकता है, ना कि अनंत को। इसलिए आपने जो बताया कि केवल ज्ञान गम्य बात है, जिनेन्द्र परमात्मा के केवल ज्ञान में ये बात आई हुई है, इसलिए हमें एक्सेप्ट करना है।
देखो यहाँ क्या कहते हैं, फिर से नीचे का पैराग्राफ। एक तो इसका रूप हर गुण में है तो सभी गुणों में ये होगी, परंतु एक गुण सेपरेट है, हर द्रव्य में है, जिसको हम सामान्य गुण कहेंगे, और अपने अपने जो अगुरु लघु गुण है उसमें वो षट्सान हानि वृद्धि रूप परिणमन होता रहता है। अब कहते हैं नीचे का पर्याय, गुण पर्याय के दो प्रकार है, उसमें अगुरु लघु गुण की षट गुण हानि वृद्धि की जो अनेक पर्याय होती है उसे यहाँ गुण पर्याय कहने में आता है, है उसे स्वभाव गुण पर्याय कहने में आता है, वह स्वभाव पर्याय है। अगुरु लघु गुण के कारण, यानी वो तो उसका रूप सब में है तो उसके कारण कहेंगे, जैसे अस्तित्व गुण के कारण प्रत्येक गुण की सत्ता है कहेंगे, ऐसे अगुरु लघु गुण के कारण प्रत्येक गुण का अपना अपना षट्स्थान प्रतिथानि वृद्धि रूप परिणमन होगा। तो फिर से अभी यहाँ क्या कहना चाहते हो पड़ोस है? बाद में प्रश्न पूछना आपका, बिल्कुल ये सब अभी अभी शुरुआत हुई ना, गुण पर्याय के दो भेद, स्वभाव और विभाव। तो अगुरु लघु गुण के कारण अनंत गुण की जो षडगुण हानि वृद्धि रूप दशा होती है उसे स्वभाव गुण पर्याय कहने में आता है। सब दूसरी जात की बात है, दूसरी जात की बात है ना, हमारे रेगुलर समझ में नहीं आ सकती है, इसलिए कहते दूसरी जात की बात है, यानी ये सूक्ष्म विषय है और बस आगम ही आधार है हमको, उसमें जितना समझ सकते हैं कहते वो कौन से षट्स्थान है वो तो बता सकते हैं, परंतु वो किस तरह से उसका परिणमन होता है हमें कैसे समझना, तो कहते वो हमें समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद तो हमारा ज्ञान का विषय ही नहीं हो सकता, वो हमारा ज्ञान का विषय इसलिए कहते हैं कि हम आगम से हम देखते हैं, परोक्ष जितना आगम में कथन आता है उतना हम समझ सकते हैं। हाँ, गुण में, हर एक गुण में और उसके हर एक पर्याय में अविभाग प्रतिच्छेद, उसकी शक्ति कितनी है, गुण में तो अनंत गुण सामर्थ्य है और पर्याय में उसकी प्रकटता होती ही ना दिख हो सकती है, परंतु पर्याय में भी वो गुण, जैसा हम वो कारण शुद्ध पर्याय में कैसे लिया, वो इस तरह से इसको कुछ अगुरु लघु गुण को लेना है, अनादि अनंत शुद्ध पर्याय को लेना है, वो पर्याय में और प्रकटता होती उसमें और बात अलग बताते हैं। इसलिए स्वामी जी भी कहते जितना समझ में आता है उतना समझो, बस होता है इतना समझ, इतना तो अभी एक्सेप्ट करना। हाँ देखो 38 पेज, 38 रूपादि के या ज्ञानादि के, देखिए इसमें तो यही लिया है भाई, इस शरीर में वर्ण गंध रस स्पर्श है वह रूपादिक है, और आत्मा में ज्ञानादिक है वह ज्ञानादि है, उसके स्व पर के प्रवर्तमान, आत्मा में राग है उसमें उपादान अपना है, किसका है उपादान, जीव का, वो जीव राग रूप परिणमित हुआ है उसमें, वो भले उसको अशुद्ध उपादान भी कहते हैं कहीं पर वो है उपादान जीव का, और निमित्त कर्म है, वो तो सामने वाले को देखकर आए हो तो कर्म का वो निमित्त का भी निमित्त है, इसको निमित्त का नोकर्म कहने में आता है, कर्म का नोकर्म नाम है उसका, एक्चुअली क्रोध हुआ जीव का परिणाम क्रोध है, वहां नियम रूप निमित्त कौन है, क्रोध कर्म का उदय, पर ये क्रोध कर्म का उदय कैसे गए, तो वो क्रोध कर्म का उदय आया है परंतु अभी बाह्य में कौन अन्य और कारण दिखता है, तो वो कारण का भी कारण कहेंगे, वो क्रोध कर्म का उदय आया तो उसने डायरेक्ट जीव को कैसे, वो गुस्सा कैसे आया, तो आया तो उसके निमित्त से, जीव ने स्वयं गुस्सा किया है, परंतु बाह्य में और कोई एक अन्य चीज है, बच्चों ने तूफान किया, हमारे मन के समय अनुकूल कुछ कार्य नहीं हुआ तो गुस्सा आया, तो हमें तो लगता नहीं नहीं हमने उसको लक्ष्य करके गुस्सा किया। एक्चुअली गुस्सा आया तो उसमें अंतरंग निमित्त, जिसको कहेंगे अंतरंग निमित्त यानी नियम रूप निमित्त, क्रोध कर्म का उदय है। परंतु उदय आया इसलिए क्रोध हुआ ऐसा नहीं है। निमित्त और निमित्तिक एक समय में होने वाले दो कार्य है। जब आप दर्पण के सामने जाते हो तारा भाई, सुबह उठ के पहले कार्य वही होता है ना अपना, तो पहले हम जाते हैं और बाद में प्रतिबिंब आता है कि पहले प्रतिबिंब है और हम बाद में जाते हैं? आप गए इसलिए प्रतिबिंब आया, तो सामने जाते तभी आया ना, क्या कहते हैं? दोनों एक समय में। तो हम वहां है तो ये हमारे भी शरीर की बात है, वो शरीर शरीर में उसकी अवस्था, और दर्पण में जो दिख रहा है प्रतिबिंब शरीर जैसा वहां अवस्था हुई वो दर्पण की दर्पण के कारण। तो वहां सामने कोई चीज खड़ी है इसलिए वहां प्रतिबिंब हुआ कि नहीं हुआ? तो कहते नहीं हुआ। प्रत्येक द्रव्य की अवस्था अपने से होती है, परंतु ऐसा वहां नियम रूप है कि यहाँ कर्मों का उदय हो रहा है, क्रोध कर्म का, तो यहाँ जीव क्रोध स्वयं अपने से कर रहा है।
यानी मूल क्रोध कर्म निमित्त है,
मूल यानी उसको नियम रूप निमित्त कहें, नियम रूप निमित्त।
उसके पहले जो मोहनीय कर्म वो निमित्त,
मोहनीय का वो भेद है ना, मोहनीय का भेद है। मोहनीय के भेद कौन से है? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय में वो मिथ्यात्व आ गया, बाकी दो की बात छोड़ देते हैं। और चारित्र मोहनीय में क्या है? अनंतानुबंधी और प्रत्यय प्रत्यय संयोग, चार प्रकार के क्रोध, चार प्रकार के मान, चार प्रकार के माया, चार प्रकार के लोभ, और फिर नौ नौ कषाय। तो उसमें से अभी मिथ्या दृष्टि है, क्रोध कर रहा है, तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन चारों क्रोध का उदय हो रहा है वहां पर, और जीव यहाँ क्रोध कर रहा है। जीव के क्रोध के तरफ देखकर हम कहेंगे यहाँ क्रोध का उदय चल रहा है, क्योंकि हमने आगम से जाना है। और कोई केवल ज्ञानी क्या देख रहा है, या कोई अवधि ज्ञानी भी हो सकता है, क्रोध कर्म का उदय चल रहा है, यहाँ जीव के क्रोध चल रहा है। यानी वो एक दूसरे को बताने वाले है, कोई एक के कारण दूसरा नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां सारे क्रोध मान माया लोभ सभी परमाणु पड़े हैं ना, क्योंकि अनादि से बनता आया है और सारे के सारे वहां विद्यमान है, लाइन से हाथ जोड़कर खड़े हो रहे हैं। आप क्रोध करो तो हम उदय में आएंगे, आप माया करो तो माया का उदय कहलाएगा, है ना।
अभी आपने जो बताया कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव क्रोध कर रहा है, तो वहाँ अनंतानुबंधी और प्रत्यक्षण प्रत्यक्षण संजुलन चारों ही क्रोध का
उदय
होता है। तो उसको बंद भी चार क्रोध का ही होगा क्या?
उसको बंद चार चौक 16 का होगा। करता है क्रोध, चार प्रकार के क्रोध का उदय है, जीव ने क्रोध कषाय किया और अभी बंद हो रहा है। अनंतानुबंधी आदि जो चार प्रकार है ना, क्रोध मान माया लोभ सबका, आप क्रोध करो तो भी 16 का बंद होगा, मान करो तो भी 16 का बंद होगा, माया करो तो भी 16 का, और लोभ करो तो भी 16 का। अभी आप नक्की करो क्या करना है। हमें तो एक दूसरे को उपदेश, क्रोध मत करो, बस क्रोध करने वाला ही दिखता है ना बाहर से, बाकी तो क्या दिखता नहीं है बाहर। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, फिर से यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ रूपाधिक और ज्ञानाधिक पुद्गल और जीव की बात मुख्यता से ली है, क्योंकि विभाव समझाना है ना, तो विभाव पर्याय तो जीव और पुद्गल में होते हैं, बाकी तो अनादि से स्वभाव पर्याय रूप ही चल रहा है सब में। देखो ये 38 पेज पर तीसरी लाइन पढ़ रहे थे हम, उसके स्वपर के प्रवर्तमान, एक्चुअली स्वपर के कारण प्रवर्तमान चाहिए। आत्मा में राग है, क्योंकि नीचे के लाइन में लिखा है ना स्वपर के कारण प्रवर्तमान। स्वपर का कारण यानी स्व का कारण क्या है? उपादान। और पर कारण क्या है? निमित्त। इसलिए दोनों कारणों को लिया, प्रत्येक कार्य में उपादान निमित्त हो गए, इसलिए कहते स्वपर के कारण प्रवर्तमान, प्रवर्तमान होने वाली, आत्मा में राग है, उसमें उपादान अपना है और निमित्त कर्म है। ये इसकी बात हमने अभी देखी। स्वपर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्था, पूर्व और उत्तर है नेक्स्ट वाली अवस्था, अर्थात पहले की और पीछे की दशा में होने वाले तारतम्य, तारतम्य ने हीना दिखता, तरतमता कहते ना, यानी हीना दिखता, उसके कारण देखने में आने वाले स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व की आपत्ति विभाव पर्याय है। उसके विशेष रूप होंगे ना, अनेकत्व की आपत्ति वो विभाव पर्याय है। इसमें कितना याद रहे, हा हा, फिर से अभी दोबारा समझा रहे। रूप यानी वर्ण, गंध, रस, रूप यानी वर्ण, परमाणु में रंग, गंध, रस, स्पर्श, गुण है। उसकी जो हीनाधिक रूप पर्याय होती है वह विभाव पर्याय है। हीनाधिक की बात है, अलग अलग हो रही है। आत्मा में भी ज्ञान, दर्शन, आनंद में रागादि की विकारता अथवा मति ज्ञान आदि है, उसे यहाँ विभाव पर्याय कहने में आता है। वो केवल ज्ञान होने पर वो स्वभाव पर्याय कहेंगे, एक सदृश अनादि अनंत। रूपादि के या ज्ञानादि के स्वपर के कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर है, स्वपर के अर्थात स्व उपादान लिखा देखो यहाँ पर, और पर निमित्त है, उसको कहेंगे उपादान और निमित्त के कारण। पूर्वोत्तर ने पहले की और बाद की आपत्ति, आपतित, आ पढ़ना अर्थात जानने में आता है। पहले प्रतिपत्ति था शब्द, अभी यहाँ आपत्ति लिया। हाँ, वैसे ज्ञान में आता। पूर्वोत्तर अवस्था में होने वाले तारतम्य के कारण देखने में आने वाले स्वभाव विशेष रूप विभाव भी है, विभाव भी है तो स्वभाव विशेष रूप। क्या कहा? वो विभाव कहा परंतु वो स्वभाव विशेष ही है, इसको विभाव स्वभाव भी कहते हैं। क्योंकि राग रूप परिणमने का तो जीव ही परिणम है, ये कोई लकड़ी नहीं परिणमित हो रही है राग रूप, वो जीव का अपना उसका एक स्पेशल नाम है, नयों में आता है। कोई ऐसा नय है ना बताने वाला, विभाव को बताने वाला एक नय है, उसको वहां स्वभाव कहा। अरे नए चक्र वाले आपको अनियत स्वभाव कहते, नियत नय और अनियत नय है कि नहीं? हाँ, तो अनियत स्वभाव किसको कहेंगे? जैसे पानी का कायमी स्वभाव शीतल है, पर उष्ण होने की पानी की योग्यता है, वो अनियत स्वभाव हुआ। ऐसे जीव का कायमी स्वभाव वितरागता है, परंतु राग रूप जीव ही परिणमित हो रहा है, वो स्वभाव विशेष कहाँ? विशिष्ट स्वभाव हो, अनियत स्वभाव कहेंगे उसको हम। यहाँ लिखा ना है तो वो स्वभाव में ही, यानी उसके भले वो अशुद्ध है परंतु वो अनियत है, हाँ कायमी नहीं है। क्या कहते हैं?
मेरा एक प्रश्न है। हाँ। आपने अभी बताया कि पानी का स्वभाव शीतलता है,
कायमी स्वभाव, हाँ।
और उष्णता ये अनियत स्वभाव है,
उष्ण रूप होने की योग्यता पानी में ही है, तो उसी
तो
को
हाँ। मुझे ये पूछना है वो पर्यायगत योग्यता है क्या स्वभाव की योग्यता है?
नहीं, योग्यता द्रव्य में होती है, उस समय की पर्याय की योग्यता द्रव्य में होती है,
विभाव रूप परिणति पर्याय में होती है,
क्योंकि द्रव्य उस समय उस पर्याय रूप से परिणमित हुआ है, वो योग्यता द्रव्य में ही पड़ी है। जब हम योग्यता देखते हैं जो पर्याय तो कार्य हुआ और कारण द्रव्य में विद्यमान है कि उस समय उस पर्याय रूप से परिणमने की योग्यता द्रव्य में पड़ी है, तो पर्याय की योग्यता कहेंगे हम, पर उस समय उस पर्याय रूप परिणमने की योग्यता द्रव्य की है।
मेरा ये पूछना, हाँ। अनियत स्वभाव जो है,
हाँ,
वो द्रव्य का है या पर्याय का है?
द्रव्य का, द्रव्य में है ना, कि हम जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य ही विभाव रूप से परिणमित हो, ये द्रव्य की योग्यता है।
यानी राग करना ये जीव का अनियत स्वभाव है?
हाँ, अनियत स्वभाव ने करता रहे ऐसा नहीं लेना है उसे, यानी वो उस रूप परिणमने की उसमें योग्यता है। हाँ,
विभाव की शक्ति भी है।
नहीं, आपके इधर विभाव शक्ति जो है, वैभाविक शक्ति जिसको आप कहना चाहते हैं, उसका कार्य विभाव रूप परिणम ना नहीं है,
कार्य विभाव रूप परिणम
नहीं, क्योंकि वैभाविक शक्ति है, अगर वो विभाव रूप परिणम ना उसका कार्य हो तो वैभाविक शक्ति सिद्ध में भी है,
क्योंकि
वो विशिष्ट विशिष्ट भाव रूप परिणम विशिष्ट भाव, हाँ, तो कहते हैं वो उसका शुद्ध या अशुद्ध परिणम हो सकता है।
पहले में तो ये नक्की करें कि जो गुण होते हैं वो द्रव्य के साथ नित्य होते हैं, उसको हमने नित्य तादात्म्य संबंध देखा, यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई द्रव्य का कोई गुण उससे जुदा हो जाए, बिना द्रव्य का हो जाए, अलग सा हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है। तो जो वैभाविक गुण जो है, जो आप मानते हैं या आपकी समझ है कि उस वैभाविक शक्ति के कारण से यह जीव विभाव रूप परिणमित होता है, तो गुण तो उसके साथ निरंतर रहेगा, तो सिद्ध में भी वो गुण है, तो क्या सिद्ध भी विभाव रूप से परिणित होते हैं? तो अपना अंडरस्टैंडिंग कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो वो आप बता रहे हैं अभी उसका कारण क्या है।
अनियत शक्ति नहीं कहा, ऐसे स्वभाव जो है, यानी वो योग्यता है, वो परिणम सकता है, उसको परिणम ना चाहिए ये बात नहीं है। अनियत नय से, अनियत नय से वो ऐसा है,
तो कहने की पद्धति है,
कहने की पद्धति नहीं, वो इसी एंगल से उसको जीव द्रव्य को ही अनियत नय से वो उस समय उस रूप परिणमित हो रहा है। नए तो जानने वाली पर्याय है, पर वो जानती क्या है, द्रव्य को किसी एंगल से जानती, पूरे द्रव्य को वो अनियत से के अपेक्षा से देख रहे, राग रूप परिणमित हो रहा है, कौन हो रहा है, तो जीव द्रव्य स्वयं राग रूप परिणमित हो रहा है। अब ये प्रवचन सार में तो ज्ञान की बात है ना, यहाँ तो राग को पहले द्रव्य और अपने द्रव्य और गुण के आश्रय से नहीं, उसके कारण वो परिणमित हो रहा है, द्रव्य स्वयं राग रूप परिणमित हो रहा है यहाँ पर, उसका कारण कोई परद्रव्य नहीं है, ये बात यहाँ लेना है, और उस अपेक्षा से उसको कहेंगे वो द्रव्य, द्रव्य का ही स्वभाव है कि अपने योग्य समय में किस रूप से परिणमित होना, वो द्रव्य में शक्ति है कि नहीं, अनादि अनंत पर्याय का जो पिंड बताया हमने, तो प्रत्येक समय में कौन सी पर्याय निश्चित है वो सुनिश्चित है, तो उसकी योग्यता भी उस समय पड़ी है कि नहीं पड़ी। द्रव्य में प्रकट तो केवल वर्तमान पर्याय है और बाकी सब योग्यता रूप से हम समझ सकते हैं, क्योंकि पर्याय रूप से अभी जो भूतकाल की पर्याय हो चुकी है वो द्रव्य में पर्याय रूप से विद्यमान नहीं है, योग्यता रूप से विद्यमान, उस समय वो उस पर्याय रूप से द्रव्य था, बस ऐसा ही, उसका भी योग्यता रूप से कह सकते, पर प्रकट अवस्था एक ही है, क्योंकि पर्याय जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होती है। क्या कहते हैं, हाँ देखो अभी आगे बढ़ते, फिर से हाँ, तो समय की योग्यता वर्तमान की भी है परंतु वो पर्याय रूप से परिणमित हो गई है, हाँ, योग्यता तो नष्ट नहीं होती है, उस समय वो परिणमित हो चुका है, अभी वर्तमान में है, परिणमा है वो, क्योंकि अवस्था एट ए टाइम कोई एक ही रहेगी और उसी को हम वर्तमान कह रहे हैं, जो प्रकट है यानी वर्तमान है, अभी ये अभाव होगा नहीं, इसका व्यय होगा, भविष्य काल की तब उसको प्रकट होगी तो उसको हम वर्तमान कहेंगे।
इस जीव में ऐसी कोई शक्ति है जिसके कारण इस जीव में विभाव रूप परिणम होता है, ऐसी कोई शक्ति है?
ऐसी एक भी शक्ति नहीं है कि जो विभाव रूप परिणम है,
अच्छा नहीं है,
परंतु फिर भी एक समय में उसके अज्ञान मिथ्यात्व वगैरह के कारण, मोह के कारण वो खड़ा कर दिया उसने, हाँ। देखो अच्छा है, ये वैभाविक शक्ति ये जो है जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला में इसे पढ़कर बताती हूँ, वैभाविक शक्ति कोने कहे छे, आ एक विशेष भाव वालो गुण छे, विशेष भाव का अर्थ होता है वैभाविक, विभाव है वो उल्टा भाव विपरीत भाव नहीं, यहाँ विशेष भाव के अर्थ में वैभाविक लिया। ते गुणना कारणे बरद्रव्य ना संबंध पूर्वक एने निमित्त के उपस्थिति में स्वयं पोतानी योग्यता थी अशुद्ध पर्यायो थाय छे। योग्यता थी एने अशुद्ध रूप परिणम ना चाहिए वाली बात नहीं आई वहां पर, और ना ही निमित्त के कारण वो हो रहा है। निमित्त है वहां, उसकी उपस्थिति है, क्योंकि कार्य होता है तो निमित्त होते ही है वहां पर। तो परद्रव्य ना संबंध पूर्वक यानी निमित्त की उपस्थिति में स्वयं अपनी ही योग्यता से अशुद्ध पर्याय होती है। आ वैभाविक शक्ति नामनो गुण जीव ने पुद्गल आ बे द्रव्यो में छे, बाकी चार द्रव्यो में नहीं। तो बाकी चार द्रव्य अनादि अनंत स्वभाव पर्याय रूप ही परिणमते हैं। जीवना गुणों में स्वयं सिद्ध एक स्वैभाविक शक्ति छे, स्वयं सिद्ध है वो शक्ति, किसी निमित्त से नहीं आई है। ते जीवनी संसार अवस्था में पोताना कारणे पोतेज विकृत थई रही छे, और सिद्ध में वो स्वयं ही शुद्ध रूप से परिणमित होती है। मुक्त अवस्था में वैभाविक शक्ति नु शुद्ध परिणमन थाय छे, ये पंचाध्याय के आधार से ये सब उन्होंने बताने। परमाणु में क्या है, जब छुट्टा परमाणु है किसी से स्कंद रूप से नहीं है तो उसमें स्वभाव पर्याय होती है, और वही परमाणु जब स्कंद रूप में है तो एक एक परमाणु की अलग अलग विभाव पर्याय कहेंगे। यहाँ पूछते आ वैभाविक शक्ति ऊपर थी विशेष शू समझू, क्योंकि इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन चलता। क्योंकि जीवनी वैभाविक शक्ति ते गुण होवा थी बंधनु कारण नथी। गुण है, गुण है ने लक्षण है, स्वभाव है, वो बंध का कारण कैसे होगा? वैभाविक शक्ति बंध का कारण नहीं है। विभाव पर्याय को कहेंगे वो बात अलग है। तेनु परिणमन पण बंधनु कारण नथी, कारण के तेनु परिणमन तो सिद्ध भगवानों ने पण होय छे। गुण है तो उसका परिणमन होगा कि नहीं होगा? तो होगा। जे जीव पर पदार्थ ने वश थाय, स्वयं निमित्त के वश होकर वश थाय, तो तेना पर्याय मा विकार थाय। मात्र वैभाविक शक्ति का परिणमन होता है ऐसा नहीं कहा, विभाव होता है। क्यों? स्वयं पर के वश होकर उसमें विभाव उत्पन्न होता है, अशुद्धता होती है। ते जीवनो पोतानो अपराध छे, ऐसा कोई गुण नहीं है, स्वभाव नहीं है कि वो विकार करे। वो जीव का अपना अपराध है, वो एक समय पुरता है और वो एक समय का समय समय करके अनादि का चला रहा है, इसलिए अनादि का बंध भी हो रहा है।
अभी आपने प्रश्न पूछा था।
हाँ,
आपने प्रश्न ऐसा पूछा था कि जीव
में, एक मिनट हाँ,
जीव में ऐसा कोई गुण है कि जो शक्ति कहो गुण कहो एक ही अर्थ होता है कि जिसके कारण जीव विभाव रूप परिणमित होता है।
हाँ।
तो जो अभी हमने जो नियम दिखाया था कि गुण हम उसी को कहते हैं कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, तो सिद्ध अवस्था में भी उसको विभाव रूप परिणमन करना
पड़ेगा। और इसे अगर गुण होगा तो विभाव करने वाला गुण होगा तो सिद्धों में भी होना चाहिए
वैसा परिणमन। तो क्या बता रहे
हैं,
ये स्वयं वश होता है निमित्त में, तब कह रहे उसको विभाव रूप परिणति होती है।
शोभा, मैंने जो भी पढ़ा वो जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर रत्न प्रश्नोत्तर माला जो सोनगढ़ से प्रकाशित हुई उसमें से पढ़ रही हूँ मैं। देखो फिर से, ये मैं वो वहीं से पढ़ रही हूँ उस पुस्तक में से। जे जीव पर पदार्थ ने वश थाय तो तेना पर्याय में विकार ने अशुद्धता थाय, ते जीवनो पोतानो अपराध छे। एक बात, जीव जे परपदार्थ ने वश थाय छे ते परपदार्थ ने निमित्त कहेवामां आवे छे। निमित्त के वश होकर, जैसे कर्म के वश होकर हम कहते ही है, जीवे विकार कर्यो, जीव ने विकार किया, उसका अर्थ क्या है? अशुद्ध भावे पोते परिणम्यो, त्यारे कया परपदार्थ ने वश थयो ते बतावा माटे। वो परपदार्थ ने उसको कुछ नहीं किया है, वो किसके वश होकर इसने स्वयं अपराध किया है, विभाग किया है, वो बताने के लिए ते परपदार्थ ने निमित्त कारण अने विकार ने नैमित्तिक कार्य कहेवामां आवे छे। हमेशा निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया जाता है। परपदार्थ जो निमित्त है उसको तो निमित्त कहते ही है, उसके वश होकर यहाँ जो कार्य परिणमित तो जीव स्वयं हुआ है, तो उस कार्य को नैमित्तिक कहेंगे, निमित्त की ओर से उसको नैमित्तिक कहेंगे। तो उसको नैमित्तिक कहने में आता है। आ कथन भेद ज्ञान करावा माटे छे, पर निमित्त नैमित्तिक ने काई असर करी अथवा तेना ऊपर प्रभाव पाड्यो, यानी निमित्त ने नैमित्तिक ऊपर कुछ असर किया है, कुछ प्रभाव किया। देखो कर्म था ना, तो कर्म के कारण हुआ कि नहीं हुआ, तो उसने कुछ जबरदस्ती जीव को कुछ नहीं कराया है, ये कहना चाहते हैं। एवं बतावा माटे ते कथन नथी, कारण के ते मानवामां आवे तो, यानी कर्म का उदय था ना इसलिए देखो जीव ने करो क्रोध किया, ऐसा अगर मानेंगे तो बे द्रव्यों की एकता मानवा रूप मिथ्यात्व था, क्योंकि किसी एक द्रव्य ने दूसरे का कुछ कार्य किया, असर डाला, प्रभाव किया, ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। माटे एम समझू के, अभी क्या समझना, ये तात्पर्य, जीवना पोताना दोष थी ज अशुद्धता थाय छे, अने ते जीव पोते करतो हुआती ते टाळी शकाय छे। अगर कर्म के कारण होता तो कर्म के फिर हाथ पैर पड़ना चाहिए कि बाबा मुझे माफ कर, अभी छोड़ दे, अभी तो छोड़ दे। हा? देखो जीव विकारो एने अशुद्ध अवस्था पोताना दोषथी करे छे, तेथी अशुद्ध निश्चय नहीं थी। वो निश्चय से जीव का कहा, कौन सा निश्चय, अशुद्ध, क्योंकि वो विकार है, ते स्वकृत है, यानी जीव ने किया है, पण ते स्वभाव दृष्टि ना पुरुषार्थ वड़े, स्वभाव की दृष्टि करने रूप पुरुषार्थ के द्वारा, पुरुषार्थ कौन सा होता है, स्वभाव की दृष्टि करना, पोता माथी टाळी शकाय छे। तो विकार टालने का एकमेव उपाय क्या है, राग को क्रोध को कम करने का उपाय क्या है,
स्वभाव की तरफ देखते।
हम किधर देखते हैं, क्रोध को देखते हैं। या मुंह में पानी रखो या एक गिनती उल्टी करो, ये कोई उपाय नहीं है। तो कहते कि स्वभावना दृष्टिना पुरुषार्थ वड़े पोता माथी टाळी शकाय छे, माटे शुद्ध निश्चय नय थी ते परकृत छे। क्या कहा, अशुद्ध निश्चय नय से स्वकृत है, और यहाँ द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा तो वो निकाल सकते हैं, इसलिए उसको परकृत कहते हैं। पुद्गल के लक्ष्य से हुआ, पुद्गल का है, कर्म का है करके उसको, हाँ उसको, उससे भेद ज्ञान करना है, इसलिए। अभी बहुत आगे विस्तार से बात है, अभी उसको छोड़ देते हैं। ये पेज नंबर 62 से हमने पढ़ा,
क्वेश्चन नंबर
181, 62 से आगे। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला भाग 1 और 2 जो है सोनगढ़ से प्रकाशित, वो लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का वो अलग बात है, ये प्रश्नोत्तर माला जुदी है। अभी अपने पेज पर आना, 38 पेज पर थे हम, यहाँ स्वभाव विशेष कहा था उसको, ये जो चौथी लाइन है बोल्ड, उसके बाद विभाव भी है तो स्वभाव विशेष रूप, इस पर से वो बात आई थी। ऐसे स्वभाव विशेष रूप अनेकत्व को जानना वह विभाव पर्याय है। लोगों को इस मूल तत्व का अभ्यास नहीं, और ऐसे ही चलो सामायिक करो, क्रोशत करो, प्रतिक्रमण करो, त्याग करो, यानी मूल सिद्धांत मालूम नहीं है और कुछ क्रिया करेंगे और हमको धर्म हुआ ऐसा मान के बैठे, तो मिथ्यात्व और पुष्ट हो जाता है, क्योंकि हमने कुछ किया ऐसा लगता है उनको, और यही करते करते मोक्ष होगा ऐसे ही मान्यता पड़ी। तो कहते लेकिन किसका त्याग, मिथ्यात्व के त्याग के बिना पर का त्याग कहाँ से आया, और पर का त्याग ग्रहण तो आत्मा में है ही नहीं, किसी भी द्रव्य में नहीं है। पर का ग्रहण त्याग तो कर ही नहीं सकता है, पर के प्रति जो ममत्व है उसका त्याग हो सकता है, पर वो कब? पहले मिथ्यात्व जाएगा तब, नहीं तो कुछ ना कुछ छोड़ा और मान लिया कि हमने ये छोड़ा वो छोड़ा वो छोड़ा, वो तो मिथ्या मान्यता तो और पुष्ट कर दी उसने। समय सार में पीछे परिशिष्ट में यानी लास्ट में उसके अंत में परिशिष्ट जो है सुरताली शक्ति का वर्णन है। आपको मालूम है वो परिशिष्ट किसने लिखा है? मनीषा बेन नहीं मालूम? हाँ नेहा बेन, हाँ अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है। हाँ परिशिष्ट, पीछे परिशिष्ट में सुरताली शक्ति का वर्णन है। ये गाथाओं में जहाँ जो कुछ वर्णन आया था वहाँ से चुन चुन कर उनको इकट्ठा बताया है परिशिष्ट ने, जो ऑल विषय जो आ चुका था उसमें से और विशेषता बता रहे, उसमें से निकाल कर बताया है। सैतालीस शक्ति, हाँ मैंने गुजराती पढ़ा, सुड़तालीस सैतालीस शक्ति का वर्णन है, हिंदी चल रहा है। उसमें एक शक्ति ऐसी ली है कि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, ऊपर बताया था ना त्याग ग्रहण आत्मा में है ही नहीं है। तो त्याग और उपादान, त्याग तो त्याग समझते, उपादान ही ग्रहण करना, त्याग करना और ग्रहण करना, इससे शून्य है कौन? प्रत्येक द्रव्य, कोई भी द्रव्य पर द्रव्य का ना त्याग कर सकता है ना ग्रहण कर सकता है, क्योंकि सभी द्रव्य छुट्टे ही है। हरेक का अपना स्वचतुष्ट जुदा जुदा है, अपनी सत्ता जुदी जुदी है। तो कहते कि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, आत्मा के अलावा पर पदार्थ के त्याग और ग्रहण से आत्मा शून्य है। वहाँ आत्मा की शक्ति, इसलिए आत्मा की बात करें, परंतु है तो सभी द्रव्य में ये लागू होता है। जड़ को ग्रहण क्या करे और जड़ को छोड़े क्या? आहा, उससे तो भगवान आत्मा भिन्न है। तो ये शरीर छोड़कर जाओगे कि नहीं परभव में? ताराबेन क्या लेके जाओगे? छोड़ के जाओगे तो कहते तुम्हारा था कब छोड़ने को? अभी हमने क्या पढ़ा? त्याग उपादान। अरे हम उससे छूटे ही है, अभी भी हम उससे जुदे ही है शरीर से, हमने मान के रखा ये मैं हूँ।
तो वो जो दस प्राण होते हैं तभी
बोलो बोलो आपका कहना है वो दस प्राण है तो ये तो कर्णान योग में बताए, जीव कांड में बताए, जीव के किसके होते हैं? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के दस प्राण होते हैं, पर ये उसको प्राण कहना ये व्यवहार है। तो सिद्ध भगवान में प्राण है कि नहीं?
नहीं
है। सिद्ध भगवान में चैतन्य प्राण है, जिसको भाव प्राण कहते हैं। प्राण उसको कहते हैं जिससे जीव जी रहा है, वो अनादि से अपने चैतन्य भाव प्राणों से जी रहा है। जीव अपने चैतन्य भाव प्राणों से कभी रहित नहीं होगा। ये जड़ प्राण जिसको कहेंगे इंद्रिय प्राण, इंद्रियों के द्वारा जानने का कार्य वो इंद्रिय प्राण है। मनोयोग वचन वो बल है जो उसका, काय बल प्राण, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, उसको बल प्राण, ये सब जड़ कहा है। द्रव्य प्राण कहते हैं, ये सारे दस प्राण है वो द्रव्य प्राण है, और जीव अपने भाव प्राणों से अनादि से जी रहा है। हा? अभी भी जो जी रहा है अपने भाव प्राण से, वो तो द्रव्य प्राण से जी रहा है कहना उपचार है, ये व्यवहार है।
देखो बात ऐसी है कि आगम में यानी केवल ज्ञानी ने 10 द्रव्य प्राण बताए डिटेल में, लेकिन ये जीव इतना स्याना हो गया आजकल का पंचम काल का, तो उसने 11वां प्राण भी चालू किया। नहीं समझ रहे? किसी के पास करोड़ों रुपया हो और वो रोडपति हो जाए तो मैं मर गया 50 किलो तो सोना हो और उस
मफत का मिल गया आपको, रखो ना
और
आपको
वो
क्या जाता
जावे छूट जावे, चोरी हो जावे, कुछ भी हो तो क्या मानेगा? अरे मैं मर गया। तो ये 11वां प्राण
पैसा
द्रव्य प्राण है।
अभी क्या है, लोग अन्न को भी प्राण कहते हैं, क्या है होता है ना, आपने सुना होगा अन्न प्राण है। हाँ उसके कारण जी रहा, इसे मान्यता है।
अरे बेटा भी मेरा जीव की प्राण है बोलते,
वो तो बोलते सब होता है। यानी जो जीव के जो नियम रूप से जो द्रव्य प्राण कहने में आते वो ये 10 प्राण है, वो भी संगी जीवों की अपेक्षा 10 के है। जिसको इंद्रिया कम होगी उसके थोड़ी 5 इंद्रिय प्राण हो गए। तो केवली भगवान को कितने प्राण होते? प्राण तो है ना, द्रव्य प्राण की बात करें। अरिहंत भगवान है उसके कितने प्राण है? 13वें गुणस्थान वाले अरिहंत भगवान को कितने प्राण है? वो भी संगी पंचेंद्रिय जीव है ना। सुशला बेन आप कहना चाहते हैं? हाँ, आयु और श्वासोश्वास। हाँ, और अरे वचन है कि नहीं, उनके दिव्य ध्वनि छूटती है, काय बल भी है। हाँ, तो 5 इंद्रिय प्राण हो गए कि नहीं हो गए? मनीषा बेन क्यों नहीं हो गए? इंद्रियों के द्वारा जानने का कार्य नहीं हो रहा। हाँ, तो उसको इंद्रिय प्राण नहीं कहेंगे। इंद्रियां बनी है क्योंकि मुनिराज अभी केवल ज्ञानी हुए हैं, तो आंख कान नाक सभी पड़े, जहाँ के वहां पर जैसा शरीर पहले दिख रहा था वैसे भी है, परंतु वो तो जड़ इंद्रिया है। पर उनके द्वारा जानने का अभी रुक गया, अभी डायरेक्ट केवल ज्ञान से पूरा अनादि अनंत पूरा लोक का लोक सब जान रहे है, तो ये इंद्रियों का मन का कोई वहां कार्य नहीं रहा। परंतु अभी वचन बल है क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि है ना, वचन योग है उनके, मनोयोग बताया जाता है पर वो तो उपचार से, मन का कार्य नहीं वहां पर, काय का चल रहा है। काय का व्यापार क्या है ना, वो शरीर के परमाणु का ग्रहण त्याग वगैरह सब चल रहा है उनके, क्योंकि उससे नाम कर्म के उदय में वो बातें होती रहती। आयु तो आयु को भी प्राण कहा, और वो तो कर्म में है ना, कर्म का उदय है और यहाँ जीव की चल रही है, वो आयु प्राण है। और श्वासोश्वास तो 13वें गुणस्थान वाले अरिहंत भगवान को श्वासोश्वास होगा कि नहीं? होना ही चाहिए। हाँ, 14वें गुणस्थान में ये सब बंद होते, केवल एक आयु रहती वहां, 14वें में आयु रहती है, और बाद में तो वो भी आयु भी नहीं है। तो चैतन्य भाव प्राण से जैसे अनादि अनंत जी रहा है, वैसे सिद्ध भगवान भी अनंत काल तक चैतन्य भाव प्राण से जी रहे हैं।
अभी एक मिनट पहले आप बोलते कि आत्मा में त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है, पर पदार्थों का ग्रहण नहीं करते।
हाँ।
और यहाँ आप बता रहे कि श्वासोश्वास प्राण है, हवा लेते हैं छोड़ते हैं तो हवा ग्रहण करते, ऐसा कैसा?
अभी ये जो कथन होते हैं ना वो तो व्यवहार कथन उपचार कथन होते हैं। जीव ने छोड़ा, हम ऐसा भी कहेंगे ना, जीव कहीं से मर कर आया, उसने औदारिक शरीर के इतने परमाणु ग्रहण किए, ये ग्रहण किए सब पद्धति है कहने की। हाँ, निमित्त का कथन है, और ये इसको कहते कर्णानि योग में तो निमित्त की भाषा होती है। परद्रव्य का कोई कार्य किया ऐसा जो जिनवानी में कथन आता है उसको कहेंगे व्यवहार का कथन, निमित्त का कथन। पर हमें मूल बात जो सिद्धांत है उसको यहाँ सीखना है। ये जो द्रव्यान योग में क्या मूलभूत सिद्धांत जो है, बिल्कुल द्रव्य गुण के लेवल पर जाकर हमको उसको देख रहे हैं, तो कहते कोई भी द्रव्य अन्य किसी द्रव्य को ना ग्रहण कर सकता है ना छोड़ सकता है। वहां पर भी जो हम कहते कि जीव ने इतने परमाणु को ग्रहण किया, वहां पर भी परमाणु जुदे है, जीव जुदा है। वहां पर भी एक एक परमाणु छुटा छुटा है, उसका द्रव्य जुदा जुदा है, दोनों मिलकर कभी एक नहीं होते, और कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। ये ग्रहण किया छोड़ा ये कहने की पद्धति है, उसको व्यवहार कथन समझना चाहिए। व्यवहार कथन, उपचार कथन, क्योंकि जहां दो द्रव्यों का मिलकर कथन आता है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कितने बार बताए, उसको व्यवहार कथन समझना चाहिए। और ये कथन ऐसी पद्धति है जिनागम की, जैसे हमने पहले लिखा ना अरिहंत भगवान की, जिन्होंने चार घाती कर्म का क्षय करके, तो क्षय किया कि नहीं किया यहाँ लिखा है ना, ये व्यवहार कथन है। यहाँ क्या कहते हैं, पर के त्याग ग्रहण से शून्य है। यहाँ तो अज्ञानी माने कि पर को छोड़ा तो मैंने त्याग किया। क्या त्याग किया? अभी तो तूने मिथ्यात्व का त्याग किया नहीं, और ये त्याग कहाँ से आया? ख्याल में आती है ना बात, पहले में पहले जाएगा तो क्या जाएगा, तो मिथ्यात्व चुने। जैसे कारण क्या है बंदे के, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, उसके जाने का भी वही क्रम होगा, नहीं तो पहले में पहले नहीं कषाय को अच्छा करो, मिथ्या तो को साबुत रखा और कषाय कम करो और कुछ कुछ करो, व्रतों का अंगीकार करो, अविरति छोड़ दो। तो कहते वो तो उसको लगता है बाह्य में कोई अंगीकार करने से वो तो त्याग हुआ ही नहीं, जब तक मिथ्या तो कायम है तब तक अनंतानुमन यदि चारों कषाय विद्यमान हो गए, बोले उसको लगता है कि नहीं मैं बहुत मंद कषाय हूँ, मंद है परंतु उसकी जाति अनंतानुबंधी की है। अभी द्रव्यलिंगी जो जाते हैं कहाँ, ग्रहवेक में, नवे ग्रह शुक्ल लेशा के उत्कृष्ट भाव करके वहां गए हैं, तो कितने भले परिणाम हो गए बाहर से, कितनी मंद कषाय, और फिर भी कहे अनंतानुबंधी आदि चारों उद्यमान है वहां पर, बाहर में व्रत अंगीकार किए है। तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि के सभी है, क्या है जो मिथ्या दृष्टि है उसको अविरति भी है, सारे सारे चारों प्रमातो है ही है, चारों कषाय है, योग भी है, फिर भी समझता है कि मैंने व्रत अंगीकार किए है, मैंने कषाय इतने कम किए तो मैं तो मुनि हो गया हूँ या मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, वो तो अभी उसका मिथ्या तो भी नहीं टला है। तो उसके पांचों विद्यमान है, जो उनको मालूम नहीं ना क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, और ऐसे देखा देखी या किसी का सुनकर उपदेश सुनकर मान लेते हैं ऐसा, परंतु हमें तो आगम अवेलेबल है ना, स्वयं आगम का अभ्यास करने के लिए थोड़े जिसको कहें ना पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान, द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, इसीलिए तो बता रहे इतना विस्तार से। एक बार इसको हम स्वयं समझ जाए तो हम स्वयं निर्णय करने के योग्य पात्र हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे ने खिलाया हुआ कितना दिन खाएंगे, दूसरा कोई दूसरी बात बताने वाला आएगा तो उसको मानने लग जाएंगे, यही तो होता आया है ना। यहाँ तक सुनते अच्छा सही लगता है, पर दूसरा कोई मिल गया तो वो सही लगने लगता है, क्या कहते कुछ बोलना चाहते थे वो निकल गया, देखो क्या कहते देखो देखो देखो, आपका ऐसा पूछना है, ऐसा होता है कि मिथ्या तो थोड़ा गया तो फिर आगे का भी थोड़ा थोड़ा कम करो, तो कहते ऐसा नहीं है, क्योंकि इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सातवें अध्याय में शुरुआत में ही बताया सूक्ष्म मिथ्या तो भी टालने योग्य है, सूक्ष्म भी मिथ्या तो नहीं है तब तक कुछ नहीं चालू होता है, तब तक उसका नाम पहला गुणस्थान वाला मिथ्या दृष्टि, कब तक, करण लब्धि के अंतिम समय में, नेक्स्ट समय में सम्यक तो होने वाला है, भले वो सातवें गुणस्थान में जाने वाला भी कोई जीव होगा, फिर भी उसका नाम क्या है, मिथ्या दृष्टि, उसका गुणस्थान पहला है। सम्यक तो सम्यक मिथ्या दृष्टि में क्या विशेषता, वो तो सम्यक तो प्राप्त करने वाला है, क्योंकि करण लब्धि में गया तो अभी सम्यक तो प्राप्त करके ही रहेगा, यही उसकी विशेषता है, यानी उसका तत्व निर्णय होकर अभी वो आत्मसन्मुख उसने उपयोग लगा लिया है, अब उसको सम्यक तो होने वाला है, वो सम्यक तो सन्मुख यानी वो कोई भी देशना लब्धि वाला है, हम सम्यक तो सन्मुख है 40 साल से सम्यक तो वो बात नहीं है, सम्यक तो सन्मुख करण लब्धि के अंत में बताया, यानी अभी वहां से वापस नहीं लौटेगा, वो तो सम्यक तो लेकर ही छूटेगा, उसको कहेंगे सम्यक तो
सन्मुख।
बिल्कुल ऐसा ही है, ग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ क्या है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र संबंधी जो श्रद्धा उनकी, उनके प्रति अहोभाव मान्यता जो विपरीत है, देव गुरु शास्त्र संबंधी, वो पहले छूटे बिना तो आगे तत्व का अभ्यास कहाँ से करेगा सही, यानी उसको सच्चा उपदेश ही नहीं मिला, उसको सच्ची देशना भी नहीं मिलेगी तब तक, इसलिए गृहित मिथ्या तो बिल्कुल छोड़ने लायक है, पर गृहित मिथ्या तो अनंत बार छोड़कर भी अगर उसको अगृहित कायम रहता है तो फिर दोबारा गृहित होने में क्या, उसको अन्य अन्य भव में जाता है तो अन्य अन्य मान्यताएं हो जाती है इससे, क्योंकि मिथ्या तो है ना बहुत नए नए फैशन लेके आता है। सच्चे देव गुरु शास्त्र में भी वो है ना, अरे पार्श्वनाथ कोई फल देता ही नहीं, यहाँ की बात और वहाँ की बात ऑल छोड़ दो, मान्यता है ना, मान्यता है कि ये हमारे भगवान यहाँ के नहीं चलेंगे गांव के, तो वहाँ के जाके करेंगे।
अरे उसको तो त्याग उपादान शून्य तो शक्ति का ही पता नहीं है,
कुछ नहीं पता उसको,
भगवान कुछ देते हैं वरना दे सकते हैं ना, दे त्याग कर सकते हैं ना ग्रहण कर सकते हैं।
अभी वितराग भगवान के सामने जाके भी मन्नत मांगना ये भी तो गृहित मिथ्या दृश्य हुए, वितरागी के आपने मान्यता में सरागी कर दिया है, मान्यता में आपने सरागी माना है, वो कुछ देने वाले ऐसा माना कि हम उनके भक्त हैं तो हमारा संकट तो दूर करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी सच्चे देव मिले हैं फिर भी उनके संबंध में ऐसी जो खोटी कल्पना करता है वो गृहित मिथ्यात्व है।
तो आजकल चल रहा है ना,
कैसी वो भक्ति किसने लिखी होगी, ऐसे होगी ना कि जो मानते हैं कि ये भगवान कुछ देते हैं उन्होंने लिखी है भक्तियाँ।
देखो भक्तिवश व्यवहार का कथन हो सकता है, बोला जाता है, लेकिन हमें तो जिनको तत्व का अभ्यास है उसको तो समझना चाहिए ऐसा। अच्छा अच्छा, आपके लिए दोबारा हमको क्या, वंस मोर हम ये कह रहे हैं भक्तिवश तो कहेंगे कि तुम दाता हो, तुम संकट हरता हो, ऐसा कहेंगे, सुख का दे दाता हो, लेकिन वो तो उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है, ये समझने की लायकत अपने में होनी चाहिए। क्यों, अभी बहुत सारे अपनी ज्ञानत्राय की देखो आप कितनी ये है, उसमें सब ऐसा ही है कि भाई तुम संकट हरता हो, तुम अमुक हो तमुक हो।
वो संकट कौन सा, वो संसार रूपी संकट है अभी कौन से। हाँ,
और मैं दूसरी बात बताना चाहता था, अगर एक दो मिनट है तो मैं बता देता हूँ, जो कल ही बात हो गई थी, आप नहीं थी दूसरे क्लास में। ऐसा है आत्मा में जो ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, उसकी जो सम्यक रूप से परिणति होती है हरेक की अलग अलग पद्धति से होती है। यानी श्रद्धा गुण का द्रव्यानुयोग दो ही परिणमन बताता है, या तो चित या तो पट, यानी या तो किंग या तो स्केल, यानी या तो सम्यक्त्व या तो मिथ्यात्व। ऐसा मिथ्यात्व थोड़ा 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 गया, थोड़ा सम्यक्त्व आया, थोड़ा थोड़ा ऐसा करके कहने, उधर तो चट मंगनी पट शादी है, ख्याल में है। और श्रद्धा, श्रद्धा गुण की बात हुई, चारित्र गुण में जिसको आजकल के लोगों को तो समझना बहुत आसान है, इंस्टॉलमेंट में वो परिपूर्ण होता है। कैसा, कि एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो उसको स्वरूपाचरण चारित्र, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया तो उसको देश चारित्र, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो उसको सकल चारित्र, चारों ही कषाय निकल गया चौकड़ी वाले तो वो यथा क्या चल। ऐसा स्टेप बाय स्टेप हफ्ते हफ्ते से जिसको हम कहेंगे वो चारित्र गुण की परिणति है। और ज्ञान गुण में ऐसा होता है कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, कोई जीव उसके बाद डायरेक्ट केवल ज्ञान की भी प्राप्ति करता है, कोई मति श्रुत अवधि, फिर कोई मति श्रुत मन पर्याय, फिर केवल ज्ञान, और कोई मति श्रुत अवधि मन पर्याय और फिर बाद में केवल ज्ञान। अलग अलग पद्धति से वो परिपूर्णता को प्राप्त होता है। ये बात अगर हमारे ख्याल में होगी तो आपने जो पूछा ना वैसा संभ्रम नहीं रहेगा कि क्या स्लोली एंड ग्रेजुअली, नहीं, श्रद्धा में ऐसा होता नहीं। अभी भाई साहब ने एक बात उठाई थी, कर्णानुयोग श्रद्धा गुण की चार पर्याय को कहता है, एक मिथ्यात्व, एक सासाधन सम्यक्त्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक अविरत सम्यक्त्व। ये डिटेल वाली बात है, शिवों के परिणामों के अनुसार वह गुणस्थान को प्राप्त करता है, लेकिन द्रव्यानुयोग तो डायरेक्ट 1 2 3 कलर्स। हाँ
रुकेंगे यहीं पर, नीचे का पैराग्राफ है वहाँ से पढ़ेंगे कल,
दयादान व्रत कल।
हाँ दयादान व्रत वहाँ से शुरुआत करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देत हूँ। नरेंद्र
नमो सीता नमो आय नमो वज नमो लोय संसार नमो सीता नमो आय नमो वज नमो लोय संसार।
नमो यंत्र नमो सिद्धान नमो आय ज्ञान नमो व्याय नमो लोय संसावन नमो यंत्र नमो सिद्धान नमो आय ज्ञान नमो व्याय नमो लोय संसावन नमो